ओम शांति। आज 17 जनवरी है और हर साल 17 जनवरी को हम यहाँ ओम शांति भवन में किसी वरिष्ठ भाई अथवा बहन का ब्रह्मा बाबा के संग के संस्मरण रखते हैं। तो आज हमारे बीच अमीरचंद भाई हैं। बहुत सुंदर इनका अनुभव है ब्रह्मा बाबा के संग, कितने वरदान बाबा ने उनको दिए हैं, चाहे साकार बाबा ने चाहे अव्यक्त बाप दादा ने, और इतने निर्वाण हैं। हालांकि सारा पंजाब जोन आप संभालते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, ये सारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, उत्तर भारत के जो भी प्रांत है, सबका आप प्रशासन करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी कैसे सहज रहते हैं, सरल रहते हैं, सबका प्यार आप पर है और बिल्कुल निश्चिंत जैसे कि कुछ है ही नहीं। तो ऐसे बहुत हमारे मीठे भाई अमीरचंद, नाम ही देखो अमीरचंद है। मैंने इनसे पूछा, अमीरचंद शुरू से ही है, क्योंकि बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि एक भाई का नाम फकीरचंद था, तो बाबा ने उनका नाम बदली कर अमीरचंद रख दिया। हाँ, फकीरचंद नहीं, अमीरचंद। तो मैंने इनसे पूछा, आपका नाम अमीरचंद था या वो आप ही थे जिनका बाबा ने नाम बदल कर अमीरचंद रखा? तो कहा, नहीं नहीं, मेरा शुरू से ही ये नाम था, शुरू से ही ना। तो वो कोई और होगा। तो देखो, शुरू से ही ये नाम इनका है और ज्ञान के तो धनी है ही, और गुणों के भी धनी है, शक्तियों के भी धनी है, और सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है। तो हम इनसे अनुभव सुनेंगे कैसे बाबा ने इनको कितना आगे बढ़ाया, और आज बाबा के सभी बच्चे इनको एक आदर्श रूप में देखते हैं और इनसे बहुत प्रेरणाएं लेते हैं। अमीरचंद भाई,
थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछले साल मैं 18 जनवरी यहाँ का मिस किया, क्योंकि मैं मलेशिया में था। मीरा बहन ने कहा कि नहीं, 18 जनवरी को ही आपको टाइम देना है, एक हफ्ते का, तो इसलिए मैंने मिस किया। नहीं तो मेरा ये संकल्प रहता है कि मैं 17 जनवरी को यहाँ पांडव भवन में आकर के ठहरूं और 18 जनवरी सुबह सुबह सबके साथ मिलकर के बाबा के शांति स्तंभ चारों धाम की हम यात्रा करें, ये संकल्प रखता हूँ। और इस बार वो सहज ही हो गया, कुछ कारण भी बने मगर सहज हो गया। अभी जब भी मुझे साकार बाबा के दिनों की या साकार बाबा के साथ के अनुभवों की शेयर करने के लिए कहते हैं तो मुझे बहुत पीछे जाना पड़ता है, बहुत पीछे, 60-62 साल पीछे जाना पड़ता है। 59 के 58 के एंड में मैं बाबा के पास आया, हरियाणा में करनाल में, दादी मनोहर इंदिरा मेरी पहली टीचर कहो, जन्मदाता कहो, इस जन्म को उन्होंने दिया। तो 58 के एंड में वहाँ आया और 59 जून में मैं बाबा से मिलने यहाँ पर आया। तो 59 जून और अभी 2020, 60 साल से भी ऊपर का समय हो गया। जब भी मुझे साकार बाबा के दिनों की कुछ बातें शेयर करने के लिए कहते हैं तो आजकल मैं देखता रहता हूँ इंटरनेट में कितनी चीजें हमें साकार बाबा की जीवन के संबंध में मिल रही है। हमारे राजू भाई भी बहुत मेहनत करके सारे सेवा केंद्रों पर बहुत अच्छी अच्छी मटेरियल भेजते रहते हैं और भी, तो इसलिए इसमें बहुत विस्तार है। अगर हम ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं के बारे में टॉपिक रखते हैं वो अलग विषय हो जाएगा, और अगर हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के संबंध में बात करते हैं कैसे ब्रह्मा बाबा में से बाबा की प्रवेशता हुई और कैसे कैसे स्थापना का कार्य शुरू हुआ वो एक अलग विषय हो जाता है। मुझे जो कहा गया है वो है कि मेरे बाबा के साथ के अनुभव जो आपसे शेयर करूं, मगर जरूर है कि जब मैं बाबा के साथ के अनुभव शेयर आपसे करूंगा तो उस समय की व्यवस्था भी जरूर सामने आपको सामने आएगी। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ देखो ओम शांति भवन आपके लिए बाबा ने बनाया, कितना कंफर्टेबल है। नीचे भी बैठो, कुर्सियों पर भी बैठो, सोफे पर भी बैठो, कितना कंफर्टेबल है। जब ये पहली पहली बार बना था तो मुझे याद है कि हमने पीस कॉन्फ्रेंसेस रखा करते थे, तो पहली पहली पीस कॉन्फ्रेंसेस जब रखी गई थी मैं समझता हूँ कि फरवरी 83 की बात है, 18 जनवरी को मैं समझता हूँ 83 को इसका उद्घाटन हुआ था और फरवरी 83 को पहली कॉन्फ्रेंस थी। तब जब मीडिया से ऑल इंडिया के मीडिया के लोग आए थे तो दादी प्रकाशमणि को पूछा कि आप तो योगी लोग हैं, तपस्वी लोग हैं और आपने यहाँ देखो कितने सोफा चेयर रखी हुई हैं यहाँ पर ओम शांति भवन में। तो दादी ने मुस्कराया और कहा भाई हम तो योगी और तपस्वी लोग हैं पर आप लोगों के लिए ये रखा है कि आप लोग तो कंफर्टेबल बैठे हैं ना, आपको तो आदत नहीं, आप तो दो तीन दिन के लिए यहाँ आए हैं और आपको कहा जाए जमीन पे चौकड़ी लगा के बैठो तो आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो कितना अच्छा उत्तर दादी जी ने उनको दिया, जैसे साकार बाबा की आप अभी भी मुरली में दो चार दिन पहले भी आया था कि बाबा के पास भी कई लोग आते थे मीडिया वाले, और उन दिनों में भी तो एक ने बाबा से पूछा था कि बाबा आपका खर्चा कैसे चलता है। उन दिनों में विस्तार हो रहा था, बाबा के दिनों में भी ये ट्रेनिंग सेंटर भी बन गया था, हिस्ट्री हॉल भी बन गया था, कुछ और भी यहाँ स्थान बन गए थे, तो खर्चा तो होता है ना। तो बाबा से पूछा था तो देखो बाबा का कितना विश्वास वाला उत्तर उसको मिला कि बच्चे आप क्या पूछते हो, जिसके इतने बच्चे हो उस बाप को खर्चे की फिक्र होगी क्या। इतना विश्वास से बाबा ने, और वो एकदम साइलेंट हो गया एकदम, क्योंकि यहाँ फैमिली फीलिंग है, यहाँ कोई गुरुडम नहीं है, चंदा नहीं है। ये जो यहाँ पर बाबा के पास हम आते हैं यहाँ की पहली पहली विशेषता ये है कि यहाँ फैमिली फीलिंग है, यहाँ गुरु की बात नहीं है, दक्षिणा की बात नहीं है, यहाँ जैसे कि अपनेपन की है, अपनापन। और बाबा कितने प्यार से सबको कहता है कल पहले वाले मेरे बच्चे, बिछड़े हुए बच्चे, जब मैंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड, सिक्की लदे का ट्रांसलेशन कितना अच्छा है, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। हम वो बाबा के बच्चे हैं। दूसरे बाबा के दिनों में जिसे बाबा मुरली में अभी भी कहता है कि बच्चे साधना के आधार पर, साधनों के आधार पर साधना नहीं हो, साधन तो बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे, मगर हमारा असाधना का आधार साधन ना हो। जब भी मैं मुरली में ये शब्द पढ़ता हूं या सुनता हूं तो मुझे वही याद आता है, बाबा का टाइम याद आता है। कोई साधन तो थे ही नहीं, कुछ नहीं थे। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि 59 का जो पांडव भवन या मधुबन था वो कैसा होगा, इमेजिन भी करना मुश्किल होगा आपको। जब मैं बाबा के पास पहली बार आया तो कुछ था ही नहीं, एक ओल्ड हाउस जो बीच का है, बीच का पोर्शन है, अभी पांडव भवन के बीच का पोर्शन है, बस वही था, कोई और बिल्डिंग नहीं थी, नथिंग। ये ट्रेनिंग सेंटर, हवाई महल, ये हमारे निर्वैर भाई के ऑफिस जो बने हुए हैं, इसके ऊपर वाले कमरे वगैरह, मेडिटेशन हॉल, ट्रेनिंग सेंटर, हिस्ट्री हॉल, कुछ भी नहीं। आप देखो कभी विचार करो उस वक्त का मधुबन कैसा होगा। हम ये ओम शांति भवन की तरफ आते हैं और पांडव भवन के गेट को क्रॉस करके आते हैं। हम लोग पांडव भवन के गेट को क्रॉस ही नहीं करते थे, लकड़ी का टूटा हुआ गेट था ये। और आप लोग नक्की लेक में जाते हैं, सैर करते हैं, घूमते हैं, हम लोगों को मना किया जाता था, यहां जानवर है। नक्की लेक में नाश्ते के बाद मम्मा बाबा घुमाने ले जाया करते थे हमें। अपने आप कोई सिंगल सुबह को इधर जाए अलाउड ही नहीं था, एकदम जैसे हम अंदर ही रहते थे बस। और आने जाने का रास्ता हमारा किचन से बैक साइड की तरफ से था, नीचे की तरफ। वहां बड़ा सा पेड़ है, वहां तक बाबा हमें विदाई देने आया करते थे और रुमाल हिला करके हमें विदाई देते थे। और हम वह रास्ता तो भी पक्का हो गया, पहले पत्थर थे, उसके ऊपर चढ़ते चढ़ते हम उस सड़क पर ऊपर पहुंच जाते थे। और वहां से फिर बस अड्डा जो है वो एक दो बस खड़ी रहती थी, वो बस उड़ा हुआ करता था जो सेंटर में पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो उन दिनों में किस रंग का वो मधुबन था और बाबा का था, जैसे एकदम। और जैसे आजकल आप देखते हैं कि मधुबन में या शांतिवन में सारा टाइम बिजी रखने के लिए सबको कितना, मुरली का क्लास, फिर उसके बाद नाश्ता करो, फिर क्लास, फिर क्लास, फिर शाम को थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर क्लास। हमारी मनोहर दादी हंसाया करती थी कि यहां पर क्लास और ग्लास, क्लास करो, खाओ पियो, उठ के फिर आ जाओ। और उन दिनों में साकार बाबा के दिनों में कुछ नहीं था। बाबा के समय पर कोई क्लास कराए, दादियां बेशक थी पर नहीं, नो, ओनली एक मामा थी, वो भी बाबा के आने से पहले थोड़ी देर तक बोलती थी, क्लास कराती जिसे कहती, थोड़ा सा बोलती थी। और जैसे बाबा आया अंदर में, हिस्ट्री हॉल में जब देखा हमने, उससे पहले नहीं, हिस्ट्री हॉल जब बन गया तब दो वहां पर अभी भी रखी हुई हैं, एक पर बाबा बैठते थे राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर मामा बैठती थी। जैसे मामा देखती थी कि बाबा की आवाज आ गई है, बाबा आ रहा है, ओम शांति, बस और वंडरफुल ये होता था जैसे बाबा आके बैठता था, पहले तो मामा ऐसे सीधा देखती थी ना, मुरली चलाती थी 10-15 मिनट, और उन दिनों में माइक तो होता ही नहीं था, इतना छोटा क्लास होता था, सब आवाज से सुनते थे। तो मामा जैसे ही बाबा आके बैठते थे, मामा टर्न करके बाबा की तरफ फेस कर लेती थी, वो सीन भी देखने वाला होता था कि पूरा ही टाइम मामा ऐसे फेस टेढ़ा हो करके बाबा को देखती रहती थी मुरली के टाइम पर, पूरा ही समय। वो भी हिस्ट्री हाल की बात है, उससे पहले वो तो जो आप अगर अंदर अभी भी जाओगे पांडवों के अंदर, एक छोटा सा हाल है, बड़ा कमरा को के बीच वाला, वहां बाबा मुरली चलाया करते थे। और उस समय का सिस्टम ये होता था, बाबा जब बैठते थे मुरली चलाते थे तो भाई बहने कैसे बैठते थे, अब ऐसे नहीं बैठते थे इधर भाई इधर बहने, जो शुरू का हमारा सिस्टम सेंटरों पर भी मैंने वो देखा, शुरू का सिस्टम आगे माताएं बहने बैठती थी, पीछे भाई बैठा करते थे, वो सिस्टम मैंने देखा। 3-4 लाइनें होती थी माताओं बहनों की, मधुबन निवासी भी बीच में और पीछे भाई होते थे। जब मैं पहली बार पांडव भवन में बाबा से मिलने आया था तो उन दिनों में मुरली का सिस्टम भी अलग होता था, ये जो मुरली सेंटरों पर जाती है ना, ये कोई प्रिंटिंग हो करके वो करके नहीं, उसको लिथो सिस्टम कहते थे, हाथ से लिखा जाता था फिर साइक्लोस्टाइल्ड करके वो कापियां सेंटरों को भेजी जाती थी। सिंधी में भी बहने लिखती थी और हिंदी में भी, और वो पार्टियों में जो कोई भाई बहन आते थे जिनको हिंदी अच्छी लिखनी आती थी तो उनको कहा जाता था मुरली आप, वो लिखवाते थे और वो लिखते थे। तो हमको भी कहा जाता था जब मैं आया, मुझे कहा कि आपने मुरली लिखनी है उस स्टेंसिल पेपर पर और फिर लिथो होगी। तो मुझे याद है कि मैंने जब मुरली लिखी तो नीचे हम अपना याद प्यार भी लिख देते थे मुरली के अंदर, और हम लिखते थे कि अभी सीजन फुल चल रहा है मधुबन का, और टोटल 35 भाई बहने थे, 35 भाई बहने थे हम, और फुल चल रहा है सीजन, बाहर पार्टियों वाले 15-20 होंगे और बाकी मधुबन निवासी होंगे। बस आप अंदाजा लगाइए कि मम्मा बाबा के साथ 35 भाई बहने रह रहे हैं पूरा दिन, कैसा होगा। आज ये छोटा सा ग्रुप में कितने होते थे, 4-5-6 बस। हम कहते थे फलानी बहन जी मनोहर बहन जी पार्टी ला रही है, 5 भाई बहने आ रहे हैं। और उन दिनों में वो दादियों को बाबा से बहुत प्यार था और बाबा के साथ 12-14 साल गुजारे थे, और उनको बाबा ने कहा जाओ सेंटर खोलो तो चली तो गई, पर उनका दिल होता था हम जाएं बाबा के पास, पर बाबा ने कंडीशन लगाई थी पंडा बन करके आना है, ऐसे नहीं अकेले आ जाओ। इसलिए वो 2-4 भी तैयार होते थे ना तो फिर टिकट बुक करा के पहुंच जाते थे, रिजर्वेशन तो कराना ही नहीं होता था उन दिनों में, रिजर्वेशन नहीं होता था, हम भी 19-20 साल के थे। तो तब ये बात में ये रिजर्वेशन शुरू हुआ 2-4 साल के बाद। तो एक भाई बात कर रहा था, वो 2-3 टायर में टिकट बुक कराना है, मैं छोटा था 20 साल का, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, टायर में हमने बस में जाना है, हमने तो ट्रेन में जाना है ना, तो टायर क्यों कह रहे हो, 2-3 टायर ही होता ही नहीं था, इसकी नॉलेज ही नहीं थी, एकदम कितनी सिंपल थी, और अपना बिस्तरा लेकर के आपको आना होता था। जैसे अभी आप आते हो तो बिस्तरे लगे हुए हैं, कंबल सब चीजें पड़े हुए हैं, हमें अपना बिस्तर लेके आना होता था और ट्रेन में उसी बिस्तरे को ही उस पर ही सोना होता था और यहाँ पर भी वही बिस्तरा यूज करना होता था। बड़ी सिंपल सी लाइफ थी उन दिनों में, मगर जो मेन खास बात है वो है बाबा का प्यार। इस जो कार्य को दो चीजों ने, मेरा यह अनुभव है कि दो चीजों ने हमारे ईश्वरी परिवार को आगे बढ़ाया है, स्थापना के कार्य को आगे बढ़ाया है। एक है रूहानी प्यार और एक है पवित्रता की शक्ति। दो चीजें शुरू से ही हम लोगों को, सच्चाई से हम आपको बताते हैं कि पवित्रता के लिए कोई हमें मेहनत नहीं, कुछ नहीं। जैसे 19-20 साल के आए थे अब ऐसे ही चल रहे हैं कुछ हमें तो। और उन दोनों में कहा जाता था कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा मुख वंशावली मैना, ब्रह्मा द्वारा पवित्रता का वरदान। पवित्रता के लिए कुछ मेहनत किसी को करनी पड़ती थी, युगल भी होते थे, 6-7 दिन का ज्ञान सुना, कहते हमें ज्ञान समझ में आ गया है, क्या समझ में आया, हम पवित्र रहेंगे। 1-2 बच्चे वालों को मैंने देखा, मेरा अनुभव है, जैसे पवित्रता की शक्ति वरदान के रूप में मिलती थी ब्रह्मा बाबा के टाइम। बाबा के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा पवित्रता, विष्णु द्वारा पालना। तो उन दिनों में जैसे हम बाबा के पास आते थे, जैसे हम पहली बार आए, अब सफर लंबा हुआ करता था, कोले का इंजन होता था, बहुत टाइम लगा के आबू रोड पहुंचते थे, वहां हमारी भूरी दादी हुआ करती थी, वो सबको रिसीव करती थी स्टेशन पर, और फिर बस के इंतजार में हम बैठ जाते थे। बस आएगी, माउंट आबू जाएंगे, ऊपर में 1 या 2 बसें होती थी, और जब वहां पहुंचते थे हमारी शक्लें बदली होती थी, कोले के इंजन से, सब चीजों से। फिर हमें कहा जाता था फ्रेश हो जाओ, फिर हम फ्रेश हो करके और बाबा के कमरे में हम बैठ जाते थे। अब जैसे ही बैठे हम बाबा के कमरे में, मुझे वो सीन जब मैं इमर्ज करता हूं, हम 5 मेरे कल भाई बहने थे, हम बैठ गए फ्रेश हो करके। तो बाबा के कमरे में एक अंदर से गेट होता था, उसमें मम्मा और बाबा दोनों आ गए और आकर के हमारे सामने गद्दी पर बैठ गए। जैसे ही हमने बाबा को देखा पहली बार और बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, हमें तो अपना स्वरूप ही भूल गए। बाबा को भी लाइट में देख रहे हैं, अपने को भी लाइट में देख रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे लाइट, और बाबा देख रहा है हमारी तरफ, हम बाबा की तरफ देख रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं। तो बाबा के नैनों में हमें ऐसे लगने लगा जैसे बाबा के नैन गीले हो रहे हैं, जैसे कोई बहुत आपको नजदीक वाला मिलता है कुछ समय के बाद, तो आप देखो कैसे फील होता है, लौकिक वाला या कोई बहुत जिससे आपको स्नेह प्यार है, बहुत समय के बाद बिछड़ा हुआ आपसे मिले, तो आपने देखा होगा कि कहीं लिपट जाते हैं, गले लिपट जाते हैं। लौकिक में भी मैंने देखा जैसे आंसू आने लग जाते हैं, प्रेम प्यार के आंसू आते हैं। ये संबंध, संबंध में समीपता। अब आप देखो लौकिक दुनिया में भी, आप देखो आप किसी मार्केट में घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आपकी अपनी बहन भी आ गई शॉपिंग करने, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, लौकिक बहन को, तो आपको कैसे लगा उस समय पर? कोई आपको कहेगा कि आप मुस्कुराओ जरा? नेचुरल है कि जब हम अपने को देखते हैं अब मैं कई दफा सोचता हूँ, सच्चाई यह उन दिनों की बातें याद करता हूँ और प्रेजेंट को देखता हूँ, ज्ञान वही है, एक बाबा है, हम उसके संतान है। ब्रह्मा मुख वंशावली शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हम हैं, ज्ञान वही है, मगर अब वो चीज बहुत कम नजर आती है, सच्चाई ये बहुत कम। हम एक दूसरे को मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी करते हैं, पर हमारे नैन चैन बदलते नहीं है। देहधारी को देख के बदलते हैं और अपने इस अलौकिक परिवार को नहीं बदलते, ये तो अविनाशी है। बाबा ने ये भी कहा कि यही आत्मा है, बच्चे पुनर्जन्म लेते लेते आप, ये आपका परिवार है, आपका संबंध ऐसे नहीं है, आप ब्राह्मण परिवार वाले ही चक्कर लगाते रहते हो, आपस में संबंध में आते रहते हो। हमें ये अंदर नॉलेज है, नॉलेज के आधार से हम मानते हैं कि ये भी आत्मा ब्रह्मा बाबा की मुख वंशावली है, शिव की संतान है। हम नॉलेज के आधार पर एक दूसरे को समझते हैं कि हमारी बहन है, रूहानी बहन है, अंदर समझते हैं भाई बहन है, समझते हैं, मगर हमारे नैन चैन बदलते नहीं। वो प्यार इमर्ज नहीं होता है। बाबा के दिनों में ये चीज वंडरफुल थी, जैसे बाबा ने हमें देखा तो हमारे में भी और बाबा में भी, पहले बाबा में नेचुरली है, बाबा को ये थॉट आया कि आओ बच्चे आ गए बच्चे, जैसे बाबा आके सामने बैठा और दृष्टि दी तो थॉट क्रिएट भी किया ना बाबा ने, दृष्टि देते हुए थॉट क्रिएट किया, आओ बच्चे आ गए, ऐसे बाबा जैसे आप किसी को कहो आ गए, काफी बहुत देर के बाद आए, ऐसे अगर आप थॉट क्रिएट करो तो प्यार इमर्ज होता है ना। तो जैसे बाबा ने दृष्टि दी ऐसे बाबा देख रहे थे, दृष्टि दे रहे थे, हमें तो पता ही नहीं लगा, हम तो कंट्रोल ही नहीं कर पाए अपने आप को। जैसे लौकिक में भी हम मिलते हैं, गले मिलते हैं, ऐसे हम बाबा की गोद में चले गए, और केवल हम ही नहीं गए, बाबा की गोद में कुमार हो कुमारी हो माता हो भाई हो बहन हो बूढ़ा हो बच्चा हो कोई भी हो, बाबा की गोद में चले जाते थे और आंखों में आंसू बहने लग जाते थे, और बाबा गले लगा के ऐसे ऐसे करते थे, आओ बच्चे आ गए बच्चे, अब तो बिछड़े हुए आ गए, मिल गए ना, ऐसे बाबा कहते थे, अभी तो मिल गए ना, ऐसे बहुत बाबा प्यार से थपकी देते थे, जैसे अपनेपन की फीलिंग आती थी। वो अब ड्रामा अनुसार आप देखिए, हमने देखा जब गुलजार दादी के तन में भी बाबा आया करते थे ना, तो एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए स्टेज पर जाने के लिए कितनी एप्लीकेशन लोग करते थे, एक सेकंड ऐसे लाइन में खड़े रहो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए, और जिनको वो दृष्टि मिली हुई है स्टेज पर उनका अनुभव आप पूछो, उस एक सेकंड में आपको कितनी प्राप्ति हो गई। और यहां तो डायरेक्ट सारा टाइम ही बाबा के साथ है, दृष्टि मिली रही है। जैसे मैं कह रहा था उस समय पर क्लासेस नहीं होती थी, उस समय हम कैसे बिजी रहते थे, सारा दिन कैसे बिजी रहते थे, ग्रुप भी छोटा ही होता था सारा 20-25-30 का, तो उस समय की रूटीन ये होती थी कि अब बाबा से आए हैं, चार पांच मिल रहे हैं, पीछे बैठ जाते थे हम भी, अब ये चार पांच का ग्रुप बाबा से विदाई ले रहा है, हम भी पीछे बैठ जाते थे, बस सारी रूटीन ही क्या होती थी, या बाबा बम्बा घुमाने ले गए अनादरा पॉइंट की तरफ, इधर कभी किधर कभी किधर, मम्मा फिर सीटी बजाती थी, हम लोगों को कहती थी इधर उधर बड़ी अच्छी चीजें होती थी, पौधों पर पेड़ों पर खाने वाली वो खाते थे, और फिर बाबा सीटी बजाती थी, सारे इकट्ठे होके बाबा के साथ साथ, बाबा आगे आगे हम साथ साथ, कभी बाबा घुमाने ले जाते, कभी मामा घुमाने ले जाते, कभी बाबा कहते कि इस ग्रुप को आज बाबा के साथ खाना खाना है या ब्रेकफास्ट करना है। अब आप देखो, खाना खाना या ब्रेकफास्ट करना ये तो कॉमन चीज है। आप भी कईयों के साथ खाना खाते हैं, अभी भी हम कईयों के साथ खाते हैं निर्वैर भाई के साथ, तो रोज ही कोई ना कोई आते रहते हैं जहां मैं खाना खाता हूं, रोज ही वहां तो कोई ना कोई होते ही है मगर बाबा के साथ खाना खाना या ब्रेकफास्ट करना साकार बाबा के साथ, वो सिस्टम ही अलग था। हमें तो पता नहीं था, हमें कहा आज नाश्ता बाबा के साथ है आप चार पांच का, हमने कहा ठीक है, खुश हो गए हम, आके बैठ गए, बाबा भी सामने आके बैठ गए। अब हमारे आगे भी थाली रख दी, बाबा के पास भी थाली रख दी। अच्छा, अब बाबा के पास, बाबा का खाना थोड़ा तबीयत के अनुसार अलग होता था, तो बाबा के पास थाली में खाना रखा। आप देखो, कभी आज तक लौकिक में हमने ऐसा अनुभव नहीं किया। बाबा ने थोड़ी सी रोटी, बाबा की छोटी सी रोटी होती थी, थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा लिया और थोड़ी सब्जी जो भी थी उसको ऐसे किया, आओ बच्चे आओ बच्चे, एक एक को बुलाया, गोद में लिया और मुख में वो गिट्टी, गिट्टी कहते थे, वो डाली। आज तक किसी ने नहीं किया, कभी हुआ ही नहीं, अनुभव ही नहीं हुआ। इतना प्यार करेगा कौन, अभी तो गीत रह गया ना, इतना प्यार करेगा कौन, पर अनुभव किसे पूछो हम लोगों को अनुभव है कि बाबा ने गले लगाया और विदाई के समय भी, बीच में भी और आती बार भी बाबा के गले, जाना भी आना भी गले लगना, जाना भी गले लगना। आप किसी छोटे बच्चे को, छोटे से बच्चे को पूछो, वो माँ के साथ चिपटा रहता है, भी तुझे क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, वो बता तो सकता नहीं कुछ भी, मगर अलग भी नहीं होना चाहता। उसको प्राप्ति भी है, सुरक्षा भी है, सब कुछ माँ है तो उसके पास सब कुछ है। ऐसे माँ बाप का, जिसे हम कहते हैं, तो माँ बाप ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, ये बड़ी माँ भी है, मात पिता का रूप। ब्रह्म सरस्वती जगदम्बा अलग थी, वो ठीक है, हमने उनके पालना भी दी 65 तक, मगर बाबा के अंदर जब बाबा मुरली चलाता था तो बाबा का शक्ति रूप होता था, एकदम बाबा का फेस बदल जाता था। और जैसे बाबा आके बैठता था और गीत बजता था, कई दफा आधा तो गीत भी थोड़ा से दो लाइनें बजती थी, और छोटा ग्रुप तो छोटा ही होता था, तो बाबा ऐसे दृष्टि, एक एक को दृष्टि ऐसे घुमाता था, जिसके ऊपर दृष्टि रुक गई ना, उस चार्ज हो गया, निराकार साकार दोनों आप देखो, निराकार आपको देख रहा है ब्रह्मा के द्वारा। ये अभी ज्ञान है बच्चों को है कि ब्रह्मा के द्वारा निराकार ने स्थापना का कार्य किया। अभी हम ये सुनाते हैं अनुभव, निराकार ने दृष्टि दी, फिर मुरली निराकार ने सुनाई सामने बैठ के। अभी तो हम, चलो हम आवाज भी सुन रहे सकते हैं, कुछ वीडियो बनी हुई है, ऑडियो बनी हुई है, ब्रह्मा बाबा की भी, शिव बाबा की, मुरली की बनी हुई है, सुन सकते हैं, अच्छे वो ठीक है, पर ये तो डायरेक्ट है ना। बाबा जैसे मुरली चला रहा है निराकार साकार के द्वारा, वो तो वो देखने की चीज होती थी और अनुभव करने की चीज होती थी। कितनी दृष्टि भी बाबा दे रहा है, और मुरली सुनने के बाद, एक ही मुरली सुनने के बाद ऐसे महसूस होने लगता था कि जो मुरली सुनी है वो मैं कर सकता हूं, जो बाबा ने कहा है मैंने करना ही है और मेरे में ताकत है करने की, ऐसे अंदर उसमें अनुभव होने लगता था। बाबा कहता था ये गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो ऐसे करो, हेल्थ मिनिस्टर को लिखो, कभी कोई बाबा ऐसे कहता था, हम लिख देते थे पत्र बना के बाबा को भेज दिया एक बार, बाबा कहता हाँ ठीक है बच्चे। ऐसे पता किसी को भी किसी से मिलना और किसी से। एक बार मनोहर दादी जब दिल्ली में थी तो बाबा ने कहा दिल्ली में बैठी हुई हो, जवाहरलाल नेहरू से मिली हो, उसको बाबा का परिचय दिया है। मनोहर दादी को कहती है, मनोहर दादी ने कहा बाबा कह रहा है जवाहरलाल नेहरू से मिली हो और उसको परिचय दिया है बाबा का। कहती मैं जाऊंगी, कोई कार नहीं, गाड़ी नहीं, मोटर नहीं, उन दोनों कुछ नहीं था उनके पास, और अपना अनुभव सुनाती है। कहती मैंने जाना है जवाहरलाल नेहरू के पास, कुछ कुछ चीज नहीं, कोई चीज नहीं। चल पड़ी, लोगों से पूछती है जवाहरलाल नेहरू कहां रहता है। देखिए दशा, आप देखिए दशा देखिए, और वो पहुंच गई, मिलके आई उसको। क्या चीज थी ये, हिम्मत अंदर ताकत। बाबा ने कहा है होना ही है करना ही है। ये साकार बाबा के सामने बैठने से ये एनर्जी फील होती थी, ताकत महसूस होती थी। कोई कमजोरी की कोई बात सामने आती ही नहीं थी, कुछ नहीं आता। मैंने कहा ना साधन कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। हम लोग जो पहली बार मैं आया हूं, पहली बार अंदर में जो बाबा का कमरा है उसके आगे आप लोग जाने का मौका नहीं है। छोटे छोटे कमरे हैं, जहां मम्मा रहती थी उसके साथ दो दादियां, बड़ी बहनें जो आया करती थी वो रहती थी, वहीं हमारी खटिया होती थी। पहली बार हम लोग अंदर ही सोए हैं, दूसरी बार जब आए तो भाइयों के लिए बाहर टेंट लगा लिया था, और कोई वॉशरूम नहीं होते थे, टेम्पररी वॉशरूम बनाए जाते थे। विश्वरतन दादा लकड़ियों पर गर्म पानी करते थे सुबह सुबह, और हम बकेट में आधी पार्टी लेकर के और टेम्पररी वॉशरूम में जाके स्नान करते थे। कुछ कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। बाबा खुद जो है वॉशरूम बाबा का सिंपल बड़ा टेम्पररी था बिल्कुल, साधन कुछ भी नहीं थे, नहीं थे कुछ नहीं। अभी जो जो अभी जो हमारा टेलीफोन एक्सचेंज है वो किचन था, क्योंकि उधर का किचन तो बना ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, बिल्डिंग ही कुछ नहीं थी, कोई और बिल्डिंग ही नहीं थी। मैंने कहा ना कुछ नहीं, बाहर के आंगन कच्चे थे बस। और वहां उसी में ही हम लोग रहते थे, स्नान पानी करना, जो कुछ भी करना, कोई कोई कुछ। कभी बरसात आ गई, वहां जो पैसेज अभी बना हुआ, जो हम किचन की तरफ जाते हैं पीछे पैसेज है ट्रोली वाले के साथ, वहां पर पत्थर बड़े 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 पत्थर पड़े होते थे, वहां बैठ के हम खाना करते, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो हमारी टेबल हुआ करती थी, पत्थर की टेबल पर बैठ जाते, एंजॉय करते थे। इतना मजा आता था, क्योंकि सार वक्त बाबा का पास है ना आना जाना। किसी चीज जैसे बाबा के प्यार में ही सारी प्राप्ति थी, कुछ हमें चाहिए नहीं, बस फिर खाना खा लिया, ठीक है चलो अभी जो कुछ मिलता था खा, प्यार से मिलता था सब कुछ। और इतना बाबा का प्यार, जब उसके बाद हमारी जगह बन गई कि ट्रेनिंग सेंटर बन गया, ये जब फिर हमें कमरे में हम रहते थे तो बाबा स्वयं रात को सोने से पहले हमने देखा, अचानक पता लगा कि बाबा कब्रों में चक्कर लगा रहा है। उससे पहले एक भाई को भेजते थे अगरबत्ती ये धुएं वाली, वो सब कब्रों में ऐसे घुमाता था, कोई मच्छर नहीं रहना चाहिए। फिर बाबा खुद आकर के सोने से पहले हमें देखता था कि बच्चे आप आराम से सब रह रहे हो। इतनी पालना जबरदस्त, एक एक को फीलिंग अनुभव कराना कि जैसे आप बाबा के घर में हो, बाप के घर में हो। जैसे लौकिक में भी कई दफा बाप संभाल करते हैं, मां बाप बच्चों के छोटों की खास तौर पर संभाल करते हैं, ऐसे बाबा से फीलिंग बाबा देता था, इतना प्यार की फीलिंग देता था। और उसके बाद मजे की बात और होती थी जो आप लोगों को भी शेयर करूं मैं, कि क्लास तो पूरी हो गई, बाबा मुरली ऐसे चलाता था जैसे सारे विश्व को मुरली चला रहा है, बैठे हुए 25-30 होते थे, बाबा की मुरली ऐसे चलती थी जैसे सारे विश्व के लिए चला रहा है, बाबा बोल रहा है बच्चे एक दिन ऐसा टाइम आएगा तुम्हारे 108 सेंटर हो जाएंगे। हम बड़े हंसे, हमने कहा एक सेंटर खुलता नहीं है, बाबा कहते 108 सेंटर हो जाएंगे। 108 सेंटर कैसे हो जाएंगे फिर? और बाबा को ऐसे लगता था जैसे बस हुआ ही पड़ा, अभी मुरली में आया ना, लाइनें लग जाएंगी आप देखना बच्चे, आप रोड से। अब हमें लगता है कि लाइनें लगी पड़ी हैं, देखो क्यों लगी रहती है बसेस में आने वाले, क्यों उनकी आल कल सुबह देखना आप, जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी बैठने की, अभी तो लिमिटेड है, फिर भी बस हो रहे थे आएंगे, बाकी सारे तो नीचे बैठे हुए, 20,000 यहां आ जाए तो कहां बैठेंगे। तो इसलिए जो बाबा के समय की जो शब्द कहे हुए हैं बाबा ने महावाक्य, वो जैसे कि वरदान है, वरदान। उसके बाद की कई चीजें मैं थोड़ी थोड़ी सुनाऊंगा। उसके बाद वंडरफुल बात ये होती थी कि मुरली के बाद चैम्बर होता था, चैम्बर। अब चैम्बर क्या था? सभी बच्चे मम्मा के कमरे में बैठ जाते थे, मम्मा का कमरा कोने में होता था, वहीं पर जो अब दादी का सिटिंग रूम बनाया हुआ वो आधा हिस्सा था, वो मम्मा का कमरा था। मम्मा की बेड बड़ी लगी रहती थी जिसमें मम्मा सोती थी, और आगे थोड़ी सी जगह थी, ज्यादा नहीं थी। अब चैम्बर का मायना ये होता था कि सारे वहीं जाके बैठो, अब जगह तो 35 भी बैठना मुश्किल होता था, 30-35 भी। मम्मा बाबा खटिया पर बैठ जाते थे, दोनों टोली खिलाते थे। उसके बाद अब हम लोग छोटे थे, हमें कहा जाता आगे बैठो पीछे बैठो, अब कहते थे और आगे हो जाओ और आगे हो जाओ, कहां आगे कहां हो जाए। फिर हम अपनी टांगे खटिया के नीचे मम्मा के करके ऐसे ऐसे बैठ जाते थे, सिर ऊपर रहता था बस, गर्दन ऊपर होती थी और खटिया के साथ जुड़े होते थे, जगह ही नहीं थी चैम्बर में। बाबा उसमें बहुत अरविक बातें सुनाएगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आप देखिए इतना नजदीक का संबंध, इतना क्लोज थे साकार बाबा। उन दिनों में जो सेंटरों पर भाई बहने आते थे उनके नाम भी जानते थे। एक बार मनोहर दादी जब जाने लगी तो मनोहर दादी वहां पेड़ के पास खड़ी होके बाबा के, बाबा करनाल के भाई बहनों को जानते हो? जानता हूं। बाबा बताओ, बाबा ने नाम लेने शुरू कर दिए एक तारे राम है कि ये एक वो है, सबको बाबा, चाहे सेंटरों वालों को भी बाबा जैसे कि उनकी क्लोज फीलिंग देता था बाबा सबको, इतना आप नजदीक की फीलिंग किया करते थे बिना साधनों के कुछ नहीं। जैसे मैंने आगे भी सुनाया था, अपना सारा टैची बिस्तरा लेकर के हम लोग बस अड्डे से सिर पर रख के आया करते थे। जब दूसरी या तीसरी बार आए ना तो हम लोगों को समाचार मिला अब आप लोगों को बिस्तरा सिर पे रख के नहीं ले जाना है। हमने कहा बड़े खुश हो गए, बाबा ने एक बैलगाड़ी दे दी है। हमने समझा पता नहीं एरोप्लेन आ गया भाई, वो बैलगाड़ी आएगी और आपका सवाल लेकर के पाड़ मोड़ जाएगी, आप आराम से चलते हुए जाना वो बैलगाड़ी अब मोटर कारें, अब क्या क्या साधन है, उन दिनों में साधन की कोई जरूरत ही नहीं। ऐसे नहीं हमें लगता था कि बैलगाड़ी के बिना हम सामान नहीं उठा सकते अपने सिर पर, नहीं कुछ भी नहीं, उठा ले सारे उठा लेते थे, बहने भाई माता सब अपना बिस्तरा टैची सिर पर रखो पकड़ करके जा रहे हैं पांडवों में, आना जाना उसी में रहता था। मगर अनुभव आप देखो कितना अच्छा होता था। और आपको अनुभव की बातें सुनाऊंगा थोड़ा फास्ट। तो उन दिनों में हिस्ट्री हाल बन गया, जब हिस्ट्री हाल बन गया अब मैं जॉब करता था, थोड़ी बड़ी पार्टी आई थी, 15-20 होंगे मेरा ख्याल है, तब ये ट्रेनिंग सेंटर भी बन गया था शायद मेरा ख्याल है, जगह थोड़ी थी रहने की ठीक। तब बाबा उस जाना बस में ही होता था, ट्रेन में वो बसें थोड़ी सी होती थी, अब मेरे पार्टी बाकी तो दो दिन बाद आएगी। हमारी मनोहर दादी ने कहा आप आपको छुट्टी ज्यादा नहीं मिली है तो आपको बाबा से पहले ही छुट्टी ले देंगे दो दिन पहले। पर मैंने कहा दीदी हमारी तो बस का टाइम जो है वो मुरली के टाइम है, मुरली चलेगी 8 बजे तक, बस ने चलना है 8 बजे, तो मैं कैसे जाऊंगा नीचे। कहती नहीं बाबा को मैं इशारा कर दूंगी, थोड़े तो हैं, बाबा आपको विदाई दे देगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, निर्संकल्प हो गए हम लोग, मुरली में बैठ गए बाबा के आगे आगे। थोड़े ही होते थे हम, आगे बैठते थे, छोटे थे इसलिए आगे बैठते थे चौकड़ी लगा के। तो बाबा की जैसे मुरली चलते चलते ना बाबा ने घड़ी की तरफ देखा, ये कैसे बच्चे आपको जाना है। मैंने कहा हाँ बाबा जा आओ आओ। बाबा जैसे देता था विदाई, बाबा ने गोद में लिया, मैं ऐसे बाबा के साथ गोद में, बाबा ने मुरली चलानी शुरू कर दी और मैं ऐसे। अब मैं कैसे क्या करूं, वो जो अनुभव है वो मुझे था कि बाबा ने 5-7 मिनट के बाद बाबा कहते वो बच्चे आपने तो जाना है, वो जो 5-7 मिनट बाबा के साथ निराकार मुरली चला रहा है साकार के द्वारा और मैं साथ में हूं, वो कितनी शक्ति का अनुभव होता है। आत्मा के अंदर जो छोटी मोटी कमी है जैसे खत्म हो जाती है, ऐसा अनुभव कहां है, कितना अंदर में। जैसे मैंने आगे भी सुनाया था, जब पहली बार ही मैं यहां से लौटा, हम लोग किसी का भी जाने का मन नहीं होता था, 4-5 दिन के बाद भी जब जाना होता था बाबा भी दाई देने आता था, सबके आंखों में आंसू होते थे, सबको ऐसी फीलिंग आती थी कि हम बाबा को छोड़ के कहां जाएं। लास्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा सुनाऊंगा कि 1968 की बात है, तो मेरी ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गई थी, मेरी जॉब पोस्ट बड़ी हो गई थी तो इसलिए मुझे उन्होंने चंडीगढ़ ट्रांसफर कर दिया। तो मैं बाबा से मिलने आया और बाबा को समाचार सुनाया कि सारा के ऐसे मेरी चंडीगढ़ में पहुंच गया हूं, फरवरी 68 में मेरी वहाँ पोस्टिंग हो गई थी और मैं बाबा से मिलने जून 68 में आया था। तब बाबा का ये जो आज कॉटेज बनी हुई है ये तो बनाई गई है, बाबा के दिनों में बहुत ही सिंपल थी, बहुत सिंपल, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसे बांस बांस लगा करके सिंपल सी बनाई हुई थी, क्योंकि गर्मी में बाबा फिर उसमें दिन के समय पर जा करके आराम भी करते थे, किसी से मिलते भी थे। तो बाबा ने मुझे बुलाया, 11 बजे का टाइम दिया कि बच्चे आना, तो मैं 11 बजे गया तो बाबा ऐसे बड़ा अच्छा वो बना देते थे बाबा के लेटने का, तो बाबा लेटे हुए थे, बाबा ने कहा आओ बच्चे आओ, समाचार सुना, कहा अच्छा आप चंडीगढ़ पहुंच गए हो, अच्छी बात है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये चंडीगढ़ कैपिटल डेवलप हो रहा है, 68 की बात है और ये बहुत अच्छी कैपिटल टाउन बनेगा आगे चल करके, और इसमें बच्चे अच्छा आप जगह देखो और म्यूजियम बनाओ। तब ये म्यूजियम बनने शुरू हो गए थे बाबा के दिनों में, म्यूजियम बनाओ और वीआईपी लोग, मंत्री लोग, सब बड़े गवर्नर वगैरह यहाँ बहुत लोग आकर के देखेंगे, उनकी अच्छी सेवा हो जाएगी। तो ऐसे बाबा जब कह रहा था तो मैं सुन रहा था। 68 में भी मेरी 30 साल की उम्र मुश्किल से थी, 29-30 साल का था मैं, तो मेरे अंदर में संकल्प आने लगा कि अभी तो हमारी कंडीशन जो है, मैं जब गया था तो वहां पर हमारे पास टीचर का भी ठीक प्रबंध नहीं था, मकान भी एक छोटा सा किराए पर था जिसका किराया देना भी हम लोगों के लिए थोड़ा सा मिल करके कर लेते थे, कारोबार चल रहा था, मगर उस ढंग का नहीं था क्योंकि भाई बहने कम थे। तो मैं अंदर सोच रहा हूँ, अपनी देख रहा हूँ कि कि अभी तो हम लोगों के लिए मकान का, छोटे मकान का किराया देना मुश्किल है और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी भी नहीं है जबरदस्त कि हम कोई दूसरी बिल्डिंग देखें और म्यूजियम की सोचें, तो खर्चे की बात तो होती है ना। फिर भी तो मेरे थॉट्स में वो चीजें आने लगी, तो मैं सुन भी रहा हूं और मुझे नहीं पता, मैं सुन भी रहा हूं और मेरे आंखों में आंसू बहने लगे ऐसे थोड़ा सा अंदर, ये थॉट के ये कैसे होगा जो बाबा कह रहा है, ये कैसे होगा कि बाबा लेटे हुए थे, बाबा ने देखा तो बाबा उठ के बैठ गए और बाबा ने मुझे नजदीक बुला के गले लगा के फिर दृष्टि दी, बच्चे कौन कह रहा है। जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी ना तो शक्ति भी दी साथ में, वो सारा थॉट बदल गया। मैंने कहा जी बाबा, जी बाबा, सब हो जाएगा बाबा, सब हो जाएगा, करेंगे करेंगे। ऐसे मैंने बाबा बैठा हुआ, बच्चे आप जाके बस संकल्प रखो, सब हो जाएगा। ये 68 जून की मास की बात है। जैसे मैं चंडीगढ़ आया तो उन दिनों में हमारे ब्रिजमोहन भाई, मोहिनी बहन ये नंगल में रहते थे, वहां से 2 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ में, अच्छी पोस्ट थी ब्रिजमोहन भाई की, जॉब करते थे। बाबा ने उनको पत्र लिखा या कुछ कहा, उनके टेलीफोन आने लगे कि मकान देखो। तो मैंने कहा ब्रिजमोहन भाई, उनसे तो हम बात कर सकते थे, कहते आप सब, मैं कह रहा हूं ना आपको। फिर हमने जल्दी ही मकान, बाबा ने फिर अचल बहन जी हमारी बटाला अमृतसर की तरफ थी, बाबा ने उनको भी कहा ये जून 68 की बात है और रक्षाबंधन अगस्त में था 68 में। उसके बाद अचल बहन भी वहां पहुंच गई और उसके बाद ब्रिजमोहन भाई और मोहिनी बहन भी चक्कर लगाने लगे। फिर हम लोगों ने थोड़ी दूरी पारी, अच्छी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग किराए पर ले ली और उसके म्यूजियम की तैयारी करने लगे, सोचने लगे, प्लानिंग कर रहे थे। इसी बीच में बाबा व्यक्त हो गए 18 जनवरी 1969 को। हम लोग तब दौड़े, वो तो अलग बातें हैं कैसे हम पहुंच गए यहाँ पर, बाबा के व्यक्त होने पर हम यहाँ थे। फिर जैसे हम लौटे तो दादियों को पता था कि बाबा ने प्रोग्राम दिया हुआ कि वहां म्यूजियम बनाओ, बिल्डिंग लो, ये करो। तब दादी ने मुझे बुलाया कि अमीर चंद भाई, दादी और दीदी दोनों थे, कि आप मकान तो ले लिया आपने, आप कोई सोच नहीं करना, वहां म्यूजियम बनेगा, बाबा ने कहा है। तब मुझे वो याद है कि अक्टूबर 69 को बाबा व्यक्त हुए, जनवरी 69 को, अक्टूबर 69 में वहां के एक मंत्री को बुलाया गया, बलराम जी दास टंडन, उनको बुलाया, जिसमें दादी प्रकाशमणि भी थी और भी सीनियर्स थे, और म्यूजियम का उद्घाटन हो गया। देखो ये क्या चीज है, जो हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, बाबा ने सब कुछ सहज, सब कुछ सहयोग देने वाले हमारे फोन करने लगे हमें। सहयोग कैसे, मेरा ये अनुभव है और बाबा का ये वरदान है, जैसे कि बच्चे एक कदम आगे बढ़ाओ, संकल्प रखो, सब। कई बार व्यक्त बाबा से जब मिलना हुआ, बाबा एक बार एक वरदान ही रिपीट करते थे, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मूर्त आत्मा हो, बस। और मैंने देखा कि अब वो बाबा की बात आप देखो और आज चंडीगढ़ का रूपरेखा देखो, कितनी हमारा कैंपस है, हमारे पास 1500 गज पहले थी, अभी 2000-4000 गज स्क्वेयर यार्ड में हमारा जो कैंपस चंडीगढ़ का बना हुआ है। अब उसके बाद सोनीपत रिट्रीट सेंटर पंजाब को कहा गया, अभी मैं वहां पर बहुत करके टाइम देता हूं क्योंकि वहां ग्रुप्स आते रहते हैं, 8 एकड़ में वो जगह बनी हुई है। अभी मैं वहां देखता हूं कि जहां हमारे पास जगह नहीं थी जब हम आए, यहां पर कोई साधन नहीं थे, अभी वहां 105 चार बेडेड कमरे या फोर बेडेड, 300-250 बड़े आराम से रहते, और अपनी गाय, अपनी वेजिटेबल सब चीजें। क्या मैं देखता हूं, मैं कहता हूं बाबा के वरदान कैसे काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, सहयोग इतना स्वतः मिल रहा है, स्वतः मिलता है सारे पंच जोन का, कुछ नहीं कहते हम, किसी को कुछ नहीं कहते, सबके सहयोग दिया। और वो पहले बिल्डिंग बनाई, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, यूनिक बिल्डिंग है सोनीपत की, कोई जाए उसी के अंदर रहना, उसी के अंदर खाना, उसी के अंदर क्लास, बाहर जाने की जरूरत ही, हम बाहर जाते तब हमें मौसम का पता लगता है कि ठंड है या क्या है, अंदर ही अंदर रहते हैं हम, 250-300 भी रह सकते आराम से, कंफर्टेबल। और अभी उसके साथ नया, थोड़ी 5 मिनट की दूरी पर अंदर ही ऑडिटोरियम बन गए, 1300 सीटिंग का ऑडिटोरियम है, 6 हॉल बन के तैयार हो रहे हैं। अभी उसमें एक यूनिक चीज बना रहे हैं हम लोग, जो अभी इंडिया में पहली चीज बन रही है वहां पर, तो वहां 8 कॉटेज बना रहे हैं, अंदर अंदर 8 सिंगल कॉटेज होगी, बाबा का चित्र होगा, सोफा चेयर होगी, बस बैठो और बाबा से रूहान करो पूरा दिन, उसकी बुकिंग करेंगे वहां पर। तो वो जैसे कि कैसे, मैं क्या देखता हूं समय के साथ साथ कितने साधन, आपको संकल्प में करो सब, जैसे कि स्वतः, इसलिए कि हमें हमारा ये संकल्प हो कि जो बाबा कहता है कि साधनों के आधार पर साधना, बस। जैसे कि एक ने मेरे से पूछा था, भाई जी आप लोग कार की लिमिट फिक्स करो, बड़ी बड़ी कारें लोग खरीद रहे हैं आपके यज्ञ में, आपकी कारों की ना एक फिक्स कर दो। मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा हम फिक्स नहीं करेंगे, मगर हम ये कहेंगे भी कार आए तो बैठ जाओ आराम से, नहीं आए तो पैदल चल के भी जाना पड़े तो मौज में रहो, बस। गुलामी नहीं हो कि यही कार हो हम बैठेंगे, आपको कोई रिक्शे में ले जाता है हम कहते फिर ठीक है, हम कंफर्टेबल हैं, किसी आधार पे ना रहो बस। साधन मिल रहे हैं यूज करने के लिए, अच्छा कोई भी चीज मिल रही यूज करने के लिए, मगर आप उनके अधीन ना रहो। बाबा को हमने ये देखा, बस इतनी पावर में बाबा को देखा और निर्संकल्प देखा, बिल्कुल ऐसे बाबा जैसे केयर फ्री, कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हमने समय के साथ साथ डेवलपमेंट देखी, यज्ञ की हमने, दादियों को भी देखा, सबको मैंने देखा, नहीं जैसे कि निर्संकल्प भी है, फ्री भी है, अंदर में कोई वो चीज नहीं है जो हमें टेंशन क्रिएट करे या कोई वो चीज करना, वो नहीं। तो इसलिए वो दिन भी बहुत प्यारे थे और ये दिन भी, बस ये भी मजा आ रहा है, ठीक है। यहां थे ओम शांति भवन बढ़ता चला गया, फिर ज्ञान सरोवर बन गया, फिर शांति वन बन गया, देखो क्योंकि भाई बहनों की संख्या बढ़ेगी। दादी प्रकाश बनी मीटिंग में कहा करती थी, हमें याद है कि भाई भाई बहने सहयोग दे रहे हैं तो उनके लिए साधन तो अच्छे बनाएंगे ना हम, फिर उन्हीं के लिए। जैसे बाबा ने मुरली में 2-3 दिन पहले क्या कहा कि जो सहयोग देता है बच्चे उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो यही मैंने देखा दादियों को कि जैसे कोई चीज आती है सफल करो और उससे साधन बढ़ते, धीरे धीरे बढ़े हैं। अब ये सारा पांडवन कभी मैं देखता हूं तो मुझे लगता है नीड बेस्ड, प्लानिंग से कुछ भी नहीं कुछ भी चीज प्लानिंग से नहीं है, जरूरत होती जरिए ये बना लो, ये बना लो, मेडिटेशन हॉल बना लो, वो बना लो, ये बना लो, कोई प्लानिंग से थोड़ा किया गया है। मगर अब जो आगे बन रहे हैं नेचुरली, ये थोड़ा सा प्लानिंग से करने में मगर यहां आने में मैंने देखा है विदेशी भाई का अनुभव मैंने सुने, उनको पांडव भवन में चौक में बैठे रहना ही अनुभव होता रहता है। साकार बाबा की ये धरनी वो है पांडव भवन जिसमें साकार बाबा ने तपस्या की है, साधना की है, मम्मा बाबा ने और बड़ी दादियों ने, सब ने यही रह करके तपस्या की है। इसी चाहे किसी जगह चले जाओ, जो मजा यहां पर रहने को जो चांस अगर मिलता है ना, बहुत वंडरफुल है। ओम शांति, ओम शांति, ओम।
तुझ में पा।